वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आवाज बंद करो। धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई बहनों, स्वाध्याय का समय हो गया है। अपना समय बहुत ही अनमोल है, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रतिक्षण एक एक मिनट का अपने को मूल्यांकन करना है। और अच्छा लगता है जब आप सबके यहाँ से समाचार मिलते हैं कि हम इंतजार करते रहते हैं स्वाध्याय का समय कब होगा। तो अब प्रवचन निर्देशिका की ओर ले चलती हूँ आप सबको। पेज नंबर 37 क्षायिक सम्यक्त्व की आज बात है। यानी आपने प्रथमोपशम सम्यक्त्व को जाना, क्षयोपशम सम्यक्त्व के बारे में जाना, और अब क्षायिक सम्यक्त्व को जानते हैं। तो सराग और वीतराग ये दो भेद जहाँ सम्यक्त्व के किए गए, अपसमिक और क्षायोपशमिक के सराग सम्यक्त्व हैं, और क्षायिक सम्यक्त्व ये वीतराग सम्यक्त्व है। नीचे का पैराग्राफ है पेज नंबर 37। दर्शन मोह की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन प्रकृतियां तथा अनंतानुबंधी चतुष्क इन सात प्रकृतियों के सर्वथा क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इन सात प्रकृतियों का बहुत बड़ा रोल है सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में। अगर चाहें तो इन सात प्रकृतियों का जब तक उदय रहेगा तो संसार अवस्था में मिथ्यात्व के वशीभूत रहेगा प्राणी, और इन सात प्रकृतियों का जब क्षय होना या उपशम होना शुरू होता है, आत्मा के अंदर स्वयमेव मलिनता नष्ट होती है, आत्मा पवित्र होता है और सम्यक दर्शन की ओर ये जीव कदम बढ़ाता है। तो उसमें क्रमशः काफी कुछ आपने जान लिया, कैसे कैसे लब्धियों की ओर जा करके और चार सीढ़ियों को पार करके भव्य जीव करण लब्धि की ओर जब जाता है तो नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और ऐसा भव्य जीव चारों ही गतियों में सम्यक्त को प्राप्त करने के योग्य होता है। अब ये क्षायिक सम्यक्त में भी इन सात प्रकृतियों का कैसा रोल है कि इन सात प्रकृतियों के सर्वथा क्षय से, सर्वथा क्षय मतलब फिर से उदय में नहीं आए, ये पुनः सत्ता से ये नष्ट हो जाती हैं, समूल चूल नष्ट हो जाती हैं, और ये क्षायिक सम्यक्त ऐसा होता है कि पुनः मिथ्यात्व होता ही नहीं। अब समिक के बाद नियम से मिथ्यात्व हो सकता है, होता है, और छायोप समिक सम्यक दर्शन के बाद भी कोई मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो समझो कि बेड़ा पार हो गया। दर्शन मोनी कर्म का क्षय हो जाने पर ये जीव उसी भाव में या तीसरे अथवा चौथे भाव में सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, किंतु चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करता तथा दूसरे सम्यक्तों की तरह ये सम्यक्त्व नष्ट भी नहीं होता। मार्के की बात आपने इन तीन लाइनों में पढ़ लिया कि जब दर्शन मोहनी की सात प्रकृतियों का क्षय हो गया तब उसी भाव में या तीसरे भाव से मतलब उस भाव को पार करके देवगति में गए या कदाचित नरक गति में चले गए तो अगले मनुष्य भाव को पा करके पुनः मोक्ष चले जाएंगे, या फिर चौथे भाव में चले जाएंगे देव बने या उस भाव से भोग भूमि में चले गए, उसके बाद देवता बन गए, उसके बाद मनुष्य भाव में आकर के पुनः चले जाएंगे मोक्ष, तो छायिक सम्यक दर्शन का इतना प्रताप है, इतना प्रभाव है, उसी को विशेष रूप में बताते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि बहुतेक उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि सम्राट चक्रवर्ती भरत, उन लोगों ने उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अथवा यहां से देव पर्याय को प्राप्त करके वहां से आकर मोक्ष प्राप्त करने में तृतीय भाव हो जाता है। एक भाव में सम्यक दर्शन लिया और अगला भाव बीच का देवता का मिला, पुनः तीसरा भाव मनुष्य का मिला, वहां से मोक्ष प्राप्त किया। कदाचित किसी ने सम्यक्त होने से पहले नरक आयु बांध ली, पुनः सम्यक्त हुआ तो भी वह नरक जाकर वहां से आकर मनुष्य होकर मोक्ष चला जाता है। जैसे राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डालते ही सातवें नरक की आयु का बंद कर लिया, और उसके बाद में भगवान महावीर के समोसरण में उन्होंने इतनी भक्ति की कि नरक की आयु को, सातवें नरक की आयु को घटा करके प्रथम नरक की आयु कर लिया और छायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया। तो नरक आयु बंधने से पहले उन्होंने सम्यक छायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, सम्यक्त होने से पहले नहीं, सम्यक्त के होने से पहले नरक की आयु का बंद कर लिया, और बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो उनको नरक में जाना पड़ता है, लेकिन प्रथम नरक तक ही क्षायिक सम्यक दृष्टि जाएगा। तो नरक जाकर वहां से आकर मनुष्य भव लेकर मोक्ष चले जाएंगे, तो ये भी तीसरा भव हुआ। यदि सम्यक्त के पहले तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांध ली, समझे ना, छायिक सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो क्या करेंगे कि वहां से ही छायिक सम्यक्त प्राप्त करके भोग भूमि या मनुष्य होकर और वहां से स्वर्ग जाकर पुनः यहां आकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसमें चौथे भाव में मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु इससे अधिक भाव क्षायिक सम्यक दृष्टि ले नहीं सकता। ये सारे ऑप्शन खोल दिए कि आपको अगर मनुष्य आयु का बंध हो गया है या तिर्यंच आयु का बंध हुआ है, बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो भोग भूमि के तिर्यंच या भोग भूमि के मनुष्य हो जाएंगे, और वहां पर खूब धर्म करके सम्यक दर्शन तो मिल ही गया था, अब उसके बाद देवता की पर्याय मिलेगी और फिर मनुष्य होकर के मोक्ष जाएंगे। तो ये चार भाव लिया है, चार भाव से ज्यादा कह रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि कतई भी नहीं लेगा। ये सम्यक तो इतना दृढ़ होता है कि तर्क तथा आगम से विरुद्ध श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतु उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते। भ्रष्ट से मतलब उसको छायिक सम्यक दर्शन से च्युत नहीं कर सकते, छायिक सम्यक दर्शन उसका छूट नहीं सकता। अत्यंत भयोत्पादक या ग्लानिकारक पदार्थों को देखकर भ्रष्ट नहीं होता। यदि कदाचित तीन लोग उपस्थित होकर भी अपनी श्रद्धान से भ्रष्ट करना चाहें तो भी वो भ्रष्ट नहीं होता। इतनी दृढ़ता, ये दृढ़ता क्यों आती है, क्योंकि दृढ़ता को भंग करने वाले सारे निमित्त वहां समाप्त हो गए और सातों प्रकृतियां वहां पर पूर्ण रूप से क्षय हो गई। तो क्षय होने के बाद फिर उनका उदय नहीं आता, इसलिए उनकी दृढ़ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर वह सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण रूप से आगम का श्रद्धानी स्वयं रहता है और किसी आगम के विपरीत शब्द को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बल्कि हर एक को सम्यक दर्शन में दृढ़ करने का ही हमेशा उपदेश देता है। इस सम्यक्त का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर प्रमाण है। 33 सागर प्रमाण कैसे होगा, यहां से सम्यक दर्शन लिया और जाकर के सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु मिल गई। वो 33 सागर की आयु वहां बिताई गई, पुनः मनुष्य भव लिया, तो जितने दिन मनुष्य की आयु है तो कुछ अधिक जो कहा है बस उतने दिन मनुष्य की आयु लेकर के और वो मोक्ष चला जाएगा। अब आगे प्रश्न होता है कि स्त्रियों में कौन कौन से सम्यक्त होते हैं। उसमें कहा कि औपशमिक और क्षायिक समिक, ये दो सम्यक्त स्त्रियों में होते हैं, स्त्रियों को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, ये आपको विशेष रूप से जानना है। पुनः एक प्रश्न के आधार पर बहुत सुंदर विषय छपक श्रेणी का बताया कि स्त्री वेद से छपक श्रेणी में आरोहण करना, मोक्ष जाना कैसे होगा। तो ये बात गोमट सार और धौला ग्रंथ के आधार से, सर्वार्थ सिद्धि के आधार से बताते हैं कि ये कथन भाव वेद की अपेक्षा से है। अर्थात कोई द्रव्य पुरुष द्रव्य से तो पुरुष वेदी है, और यदि भाव से स्त्री या नपुंसक वेदी है तो वो मोक्ष जा सकता है। जैसे क्षायिक सम्यक्त स्त्री वेद में भाव वेद की अपेक्षा से ही है। इसकी गहराई को समझना है। एक पक्ष ने इस गहराई को नहीं समझा, इसलिए वो लोग मानने लग गए कि मल्लीनाथ भगवान मल्ली कुमारी थे, समझे ना, और वो षटखंडागम का हवाला देने लग गए कि वहां जो भाव वेद है उसको भाव की अपेक्षा से नहीं जान सके। क्या द्रव्य से पुरुष वेद ही होना चाहिए, भाव से स्त्री वेद, या यहां तक नपुंसक वेद भी यदि भाव से है लेकिन द्रव्य से पुरुष वेद है तो वो मुनि बनकर के मोक्ष चला जाएगा। जब कहीं इन सिद्धांत की गहराइयों को नहीं समझ पाते वहीं नए मत खड़े हो जाते हैं, वहीं पर विचारधारा उलट जाती है, वहीं कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के अनुसार आपको जानना है कि जो द्रव्य से पुरुष वेदी होगा चतुर्थ काल में भी, और भाव से अगर उसके स्त्री वेद या नपुंसक वेद है तो वह मोक्ष जा सकता है। अधिकतम जिनका जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है, लेकिन कदाचित उनके भाव वेद परिवर्तित हो सकता है। यदि कोई द्रव्य स्त्री वेदी है और भाव से पुरुष वेदी हो जाए तो भी उसको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको मोक्ष नहीं होगा। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नियम है सिद्धांत के। लेकिन द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से स्त्री वेदी हुए, नपुंसक वेद हो गया, तो भी उनके मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है। इस बात को बार बार षटखंडागम की धवला टीका में खोला गया है, परंतु पता नहीं क्यों एक पक्ष ने, जिसे श्वेतांबर पंथ कहते हैं, वहां पर स्त्री वेदियों को मोक्ष मान लिया गया। हाथी पर बैठे बैठे कह देते हैं मरु देवी को मोक्ष हो गया, मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी कह देते हैं। तो अपने दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के जानकार को ये एकदम कट्टर सिद्धांत रखना है कि द्रव्य से पुरुष वेद होना चाहिए तभी क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, और द्रव्य से पुरुष वेद होना चाहिए तभी मोक्ष होगा। भाव से उनके स्त्री वेद नपुंसक वेद क्षायिक सम्यक में या मोक्ष में बाधा नहीं डाल सकता। तो फिर स्त्रियों में 14 गुण स्थान होते हैं, ये कथन कैसे बनेगा, ये प्रश्न किया। ये सब प्रश्न धौला ग्रंथ से ला ला करके पूज्य माताई ने इन विषयों का समाधान किया है कि जो 14 गुण स्थान मान लिए गए स्त्रियों में कैसे, तो वहां भी भाव वेद की अपेक्षा। कहा है कि ऐसा नहीं कहना, क्योंकि भाव स्त्री वेद से युक्त मनुष्य गति में 14 गुण स्थान का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं है, अतः द्रव्य स्त्रियों के क्षायिक सम्यक तो नहीं होता है। ये बात आप सब लोगों को दृढ़ श्रद्धान रख लेना चाहिए। धौला पुस्तक 1 के पृष्ठ 335 पर इसका खुलासा है, और जगह जगह वहां पर भाव वेद की बात आई है, और वहां द्रव्य से पुरुष वेदियों के जो गुण स्थान व्यवस्था आदि मानी गई है उसमें भाव वेद उसका उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए इन ग्रंथों की जानकारी अपने को इस प्रवचन निर्देशिका के माध्यम से मिल रही है। अब आगे विषय आया, सम्यक्त के दो भेद भी हैं, निसर्गज और अधिगमज। आपने पहले जान लिया है कि जो सम्यक दर्शन गुरु के उपदेश की अपेक्षा न रख करके उत्पन्न होता है वो निसर्ग मतलब नेचुरल होता है। उनको 8 साल की उम्र में मनुष्यों को हो जाता है, देवताओं को अंतर्मुहूर्त में हो जाता है, तिर्यंचों को दिवस पृथक तो 3 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में हो जाता है, अथवा गुरु के अल्प उपदेश मात्र से उत्पन्न हो जाता है, ऐसा पूर्व में कारण के प्रकरण में कहा है। पहले भी निसर्गज और अधिगमज के प्रकरण में इस बात को लिया है। अधिगमज सम्यक्त में गुरु का उपदेश प्रमुख है, अर्थात गुरु के उपदेश का अवलंबन लेकर ही ये सम्यक्त प्रकट होता है, अतः इसको अधिगमज सम्यक्त कहते हैं। ये प्रकरण ही है महानुभाव, ये प्रकरण ही है सम्यक दर्शन का, कि इसमें आपको अनेक प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए सिद्धांतों को भी जानना है, भेदों को भी जानना है, कारणों को भी जानना है, ताकि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ रहे, और इस बात को भी जानना है कि आज पंचम काल में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बहुत जीव है। आप भी अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन को दृढ़ करके भाव भाव में अपने सम्यक दर्शन के द्वारा ही अपने भाव भवांतर को कम करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस प्रकरण को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे आत्मानुशासन ग्रंथ के अनुसार सम्यक्त के 10 वेदों का वर्णन भी आ रहा है। तो आज के समापन में आपको ये जानना है स्वाध्याय का सार कि अब समिक और क्षायिक सम्यक क्षायोप समिक सम्यक दर्शन ये सराग सम्यक दर्शन है, और ये आज भी किसी को भी हो सकते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन है, और ये 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है, पुनः इसके बाद मिथ्यात्व होता नहीं, और ये सम्यक दर्शन पंचम काल में कर्म भूमि के मनुष्यों को नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर भगवान केवली शुद्ध केवली का अभाव है। आज भी विदेह क्षेत्र के अंदर जो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में है, समोसरण में जाते रहते हैं भव्य जीव, उनको छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, वहां से निरंतर मोक्ष की परंपरा भी चालू है। तो हम कर्म भूमिया हैं, और पंचम काल में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहने वाले मनुष्य हैं। आज यदि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ रहा, हम देवता की पर्याय में जाएंगे, और सिमंदर स्वामी के समोसरण में दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने सम्यक दर्शन को और भी अधिक दृढ़ बनाएंगे, आगे आने वाले समय में मनुष्य बन करके और मोक्ष को प्राप्त करने की हमें योग्यता प्राप्त हो सकेगी। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना जावाणी के